जय रथ माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यशोद नंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय रथ माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह अनंत देव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज प्रवचन हिंदी में होना है, है ना? कल नरसिंह चतुर्दशी है, इसलिए शायद आप सोच रहे होंगे कि आज का प्रवचन भगवान नरसिंह देव या भक्त प्रह्लाद के ऊपर होगा, परंतु आज का प्रवचन होगा रुक्मिणी देवी के ऊपर, क्योंकि कल रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस था। और अक्सर ऐसे आविर्भाव दिवस आते हैं तो हम ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं इनके बारे में। हमारे दिनदर्शिका में इतने सारे महत्वपूर्ण दिन हैं, परंतु अक्सर इन महान भक्तों की चर्चा नहीं हो पाती है किसी कारणवश। जैसा कि आप सब जानते हैं, रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण की महिषी हैं, पटरानी हैं, सबसे वरिष्ठ और सर्वप्रथम उनकी रानी, पहली रानी है रुक्मिणी, साक्षात लक्ष्मी देवी हैं। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, शक्तिमान और शक्ति, इन दोनों में हमें अंतर समझ लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान हैं, समस्त शक्तियों के उद्गम हैं, और उनकी शक्तियां अनेक हैं। भौतिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। उनकी आध्यात्मिक शक्तियां तीन प्रकार की हैं, वैसे तो हैं एक ही, श्रीमती राधा रानी, फिर भी तीन श्रेणियों का वर्णन हुआ है। एक है वृंदावन की गोपियां, दो वैकुंठ की लक्ष्मियां, और तीन द्वारका की महिषियां या रानियां। ये तीनों ही भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां हैं। कई बार लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में भला बुरा कह देते हैं कि उन्होंने गोपियों के साथ में क्यों लीला की, या उन्होंने 16,108 राजकुमारियों से विवाह क्यों किया। पहली बात तो ये है कि भगवान की ऐसी लीलाओं से ये सिद्ध होता है या साबित होता है कि वो भगवान है, नहीं तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो 16,108 पटरानियों को एक साथ में विवाह करके हर एक रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण अलग से रहा करते थे, कैसे संभव है। द्वारका में जब नारद मुनि गए थे तो उनको देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कितना अपार है। 16,108 रानियों के लिए, हर एक रानी के लिए उन्होंने एक बड़ा बड़ा महल बनाया था, और हर एक महल में वो हर एक रानी के साथ रहा करते थे। जब नारद जी द्वारका में आए तो पहले राजमहल में जाके उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी के साथ में बैठ के शतरंज खेल रहे हैं। कहीं दूसरे महल में जाकर देखा कि श्री कृष्ण सत्यभामा देवी के साथ बैठ के ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं। तीसरे महल में गए तो जाम्बवती देवी वहां श्री कृष्ण के साथ बैठकर कोई यज्ञ कर रही हैं। तो ऐसे हर एक राज महल में भगवान श्री कृष्ण अलग से उस रानी के साथ बैठे हुए थे या कुछ कार्य कर रहे थे। तो ऐसे दृश्य देखकर नारद मुनि को बड़ा विस्मय हो गया कि श्री कृष्ण का ऐश्वर्य कैसा है। तो ये है भगवान, भगवान ही हैं जो एक साथ में 16,108 रानियों के साथ में रह सकते हैं, उनके लिए महल बना सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी रानियां हैं या गोपियां हैं, ये भगवान की शक्तियां हैं। इसलिए यदि शक्तिमान अपने ही शक्ति के साथ रमण करना चाहे तो इसमें कौन सा दोष है, क्या बुराई है इसमें? जब हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हमारे लिए बुरा है ये, क्योंकि हम किसी ऐसे चीज का भोग करना चाहते हैं जो हमसे बाहर है, जो हमसे भिन्न है और जो हमारा नहीं है। लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है दुनिया में, सारी सृष्टि में ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान की नहीं है? तो क्या चीज है जो भगवान भोग नहीं कर सकते? सभी कुछ तो भगवान का ही है, सब भगवान की शक्तियां हैं। परास शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की अनंत शक्तियां हैं और वो तत्पर रहती हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। केवल भगवान की इच्छा करने मात्र से ये समस्त शक्तियां उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो जाती हैं, उनकी इच्छा पूर्ण कर देती हैं। तो ये है मतलब शक्तिमान या भगवान का। तो भगवान यदि अपने ही शक्ति के साथ रमण करना चाहे तो इसमें कोई दोष नहीं है। गोपियां भी भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, द्वारका की रानियां भी ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्तियां हैं। तो भगवान यदि ऐसे लाखों लाखों गोपियों के साथ या महिषियों के साथ या लक्ष्मियों के साथ लीला करें तो फिर भी ये निंदनीय नहीं है, बल्कि प्रशंसनीय है कि देखो भगवान का ऐश्वर्य कैसा है। भक्त लोग ऐसे लीलाओं के बारे में, लीलाओं को पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में सुनना चाहते हैं, उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो वैसे रुक्मिणी देवी भी लक्ष्मी देवी के रूप हैं, लक्ष्मी ही मानी जाती है। आप सबको पता है कि जब सुदामा जी द्वारका में आए थे, क्योंकि सुदामा जी की पत्नी ने उनको भेजा था कि जरा जाइए श्री कृष्ण के पास से कुछ लेकर आइए, वो तो द्वारकाधीश हैं, ऐश्वर्यशाली हैं और हम इतने गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, वो आपके बचपन के मित्र हैं, सहपाठी हैं, गुरुकुल में आप एक साथ में थे तो अवश्य वो आपको कुछ देंगे। सुदामा तो नहीं जाना चाहते थे श्री कृष्ण के पास कुछ मांगने के लिए। हाँ, श्री कृष्ण को मिलना जरूर चाहते थे, परंतु कुछ भौतिक चीज मांगने के लिए नहीं, वो तो शुद्ध भक्त थे। वैसे उनकी पत्नी भी शुद्ध भक्त थी, तो वो जो भेजना चाह रही थी सुदामा को, अपने पति को कृष्ण के पास, वो अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए, क्योंकि वो पति की दशा को देखकर वो सहन नहीं कर पा रही थी। दोनों पति पत्नी को खाने के लिए कुछ नहीं था प्राय, और ऐसे भूखे अवस्था में दोनों बड़े दुबले पतले हो गए थे, केवल हड्डियां दिखाई पड़ती थी दोनों की। पहनने के लिए कपड़े भी ठीक ठाक नहीं थे, रहने के लिए ठिकाना ठीक ठाक नहीं था। इसलिए सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भेजा। तो सुदामा ने सोचा कि चलो इस बहाने श्री कृष्ण का दर्शन तो हो जाए, श्री कृष्ण का संग तो मिल जाए। वो जब पहुंचे तो दूर से जब श्री कृष्ण ने सुदामा को देखा तो बड़े आनंद से सामने आकर उन्होंने आलिंगन किया। जो द्वारपाल थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे एक साधारण ब्राह्मण आए हैं, कपड़े भी ठीक नहीं पहने, सब फटे हुए कपड़े हैं, और ऐसे ब्राह्मण को हमारे द्वारकाधीश, षड ऐश्वर्य संपन्न द्वारकाधीश आके इनको आलिंगन कर रहे हैं और ऐसे प्रेम से स्वागत कर रहे हैं अपने राजमहल में। तो सुदामा जी को अंदर ले आए श्री कृष्ण, अपने शैया पर बिठाया, बिठाकर उनके चरण धोए, उनकी आरती उतारी। और फिर जब सुदामा जी प्रसाद वगैरह ले उन्होंने ले लिया, बाद में वहाँ रहे थोड़े दिन, दोनों मित्रों ने बड़े खुशी से एक साथ समय बिताया, पुराने बचपन के दिनों की चर्चा की। जैसे अक्सर बचपन के मित्र मिलते हैं तो बचपन की बातें करते हैं, तो दोनों ऐसे आपस में बातचीत करते रहे। एक दिन कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि अरे सुदामा, इतने दिनों के बाद मुझसे मिलने आए हो, क्या कुछ भेंट लेकर नहीं आए मेरे लिए? तो सुदामा ने कुछ कहा नहीं। वैसे जब सुदामा जी निकल रहे थे अपने घर से तो वो यही सोच रहे थे कि मैं क्या ले जाऊं श्री कृष्ण के लिए। तो पत्नी से कहा कि कुछ दो। पत्नी ने कहा मेरे पास कुछ घर में है ही नहीं। तो पड़ोस में जाके उन्होंने थोड़े पोहे ले लिए, जो कि गरीब आदमी का भोजन माना जाता है, और थोड़े से कपड़े में उसे लपेट के बांध के दे दिया। सुदामा जी जब पहुंचे द्वारका, और दो चार दिन बीत भी गए थे, तो जब श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई भेंट लाए नहीं, तो सुदामा ने पोहे की बात की नहीं। उन्होंने सोचा कि ऐसा जो अन्न है वो कैसे मैं दे सकता हूँ श्री कृष्ण को, वो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन खाने के आदि हैं, आखिर हैं वो द्वारकाधीश, और मैं उनको ऐसे गरीब आदमी का भोजन, वो भी बासी, जो अभी ठीक नहीं है, ये पोहा इतने दिन पुराना है, ये मैं कैसे दे सकता हूँ। तो अपने पीठ के पीछे वो झोली लगा ली सुदामा ने, तो श्री कृष्ण ने देखा, क्या छुपा रहे हो सुदामा, मुझे देना, मुझे पता है ये भेंट मेरे लिए ले आए हो, मुझे दे दो। तो सुदामा ने कहा नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण तो बड़े शक्तिशाली हैं, शक्तिमान है आखिर, और सुदामा वैसे भी भोजन नहीं लेने के कारण दुबले पतले थे बेचारे, ब्राह्मण थे, तो कैसे रोक सकते थे श्री कृष्ण को। जब श्री कृष्ण हमसे कुछ लेना चाहते हैं तो हमारे हजार हाथ भी हों तो हमको रोक नहीं पाएंगे, और जब श्री कृष्ण हमें कुछ देना चाहते हैं तो ऐसे देंगे कि हमारे दो हाथ उन चीजों को स्वीकार करने के लिए काफी नहीं होंगे। और सुदामा के साथ ऐसे ही हुआ, भगवान ने छीन तो लिया और फिर वो पोहे निकाले, उसमें से एक कण लिया और अपने मुख में डाल दिया और स्वाद लिया, कहा ऐसा स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक कहीं नहीं खाया है, बहुत अच्छा लगा कृष्ण को। जब श्री कृष्ण ने चख लिया, क्या चखा वास्तव में श्री कृष्ण के, ने क्या पोहे का स्वाद लिया, प्रेम का स्वाद। सुदामा के हृदय में जो भक्ति भावना थी, जो प्रेम थी, उसका स्वाद इस पोहे के द्वारा श्री कृष्ण ने चख लिया, तो श्री कृष्ण को बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी बार अपने उंगलियों में कुछ लेने लगे, रुक्मिणी देवी पीछे खड़ी थी, आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रही थी, क्योंकि रुक्मिणी देवी सुदामा जी को चामर से हवा दे रही थी। रुक्मिणी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ था जब उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण सुदामा ब्राह्मण की कैसे सेवा कर रहे हैं। तो रुक्मिणी देवी ने आके श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया, कर कमलों को पकड़ लिया, नहीं नहीं और नहीं लेना। वैसे रुक्मिणी देवी तो साक्षात लक्ष्मी देवी है, कोई साधारण रानी तो नहीं है। तो रुक्मिणी देवी ने कहा, आपने इस ब्राह्मण से केवल एक कण पोहा खा लिया है, उससे मैं बाध्य हो गई हूँ मेरे सारे ऐश्वर्य इस ब्राह्मण को प्रदान करने के लिए। अब दूसरी बार आप लोगे तो मेरी तिजोरी तो वैसे भी खाली हो चुकी है, अब मैं और क्या दे सकती हूँ, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगी, तो इसलिए और नहीं खाना, और नहीं खाना। तो श्री कृष्ण ने मान लिया। और जब सुदामा विप्र वापस चले गए अपने घर में, अपने गांव में पहुंचते हुए कुछ वो पहचान नहीं पाए कि मैं किस गांव में आया हूं, ये बड़ा महल कहां से आया, मेरे गांव में तो कोई महल नहीं था। और अचानक उस महल से अनेक सुंदर महिलाएं आईं बाहर, बहुत सज धज के आईं, अच्छे अच्छे महंगे कपड़े गहने पहनकर आईं। और ये सोचे कि ये मेरे गांव में ये सब महिला, ये सारी स्त्रियां कहां से आईं। तो जब सामने आए तो पता चला कि अरे ये तो मेरी पत्नी है। और पत्नी से पूछा कि ये सब क्या है, हमारे पास पहनने के लिए भी कोई कपड़े नहीं थे, और आज देख रहा हूं ऐसे महल है। फिर सुदामा को पता चला कि ये श्री कृष्ण की कृपा है, क्योंकि श्री कृष्ण ने उनके पोहे खाए थे, उनकी भक्ति स्वीकार की थी, तो रुक्मिणी देवी ने ये सारा ऐश्वर्य सुदामा को प्रदान कर दिया था। तो लक्ष्मी सदैव नारायण या श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहती हैं, तो रुक्मिणी देवी भी श्री कृष्ण की सेवा में सदैव तत्पर रहती हैं। जहां श्री कृष्ण का ध्यान जाता है वहां लक्ष्मी देवी भी जाती हैं। इसलिए जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, जो नारायण की सेवा करते हैं, लक्ष्मी दूर कैसे रह सकती हैं, लक्ष्मी देवी तो पास में ही रहेंगी। कई बार लोग केवल लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं कृष्ण को छोड़कर या नारायण को छोड़कर। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये ठीक नहीं है, हमें श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी, राधा कृष्ण या रुक्मिणी द्वारकाधीश, लक्ष्मी नारायण, सीता राम, इस तरह से शक्ति और शक्तिमान दोनों का एक साथ हमें नाम लेना चाहिए, दोनों की सेवा एक साथ करनी चाहिए। जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हरे शब्द का तात्पर्य है भगवान की शक्ति। तो जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कहते हैं तो हम ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, हे कृष्ण की शक्ति, कृपया हमें आपके चरण कमलों में स्थित करके आपकी सेवा में सदैव रखिए। ये हमारी प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। तो रुक्मिणी देवी की कृपा प्राप्त करने से कोई ऐसी चीज की कमी नहीं रहेगी, लेकिन भौतिक ऐश्वर्य रुक्मिणी देवी की ये सबसे बड़ी कृपा नहीं है, क्योंकि वो लक्ष्मी देवी हैं, सबसे बड़ी भक्त हैं भगवान की। उनकी कृपा प्राप्त करने से हमें कृष्ण भक्ति मिल जाएगी। तो लक्ष्मी देवी या रुक्मिणी देवी के पास जाके हमें धन नहीं मांगना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, तो रुक्मिणी देवी सब कुछ प्रदान कर देंगे। वैसे कृष्ण भक्त को किसी चीज की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी देवी की कृपा से या रुक्मिणी देवी की कृपा से, परंतु भक्त ऐसे कुछ चाहते नहीं है, इसलिए लक्ष्मी देवी भी दुविधा में पड़ जाती, मैं देना तो चाहती हूँ लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है। तो ये है संबंध भगवान और भगवान के भक्तों में, भगवान की शक्तियों में और भगवान के भक्तों में। तो ये है रुक्मिणी देवी। उनके पिता का नाम था भीष्मक, जो एक राजा थे। वैसे भगवान के धाम में भी एक द्वारका है, जैसे भगवान के धाम में वैकुंठ जगत में गोलोक वृंदावन है, मथुरा है, वैसे द्वारका भी है। और जब भगवान वहां से अवतीर्ण होते हैं तो वहां पर जो लीला चल रही होती है वो उनको यहाँ भी इस भौतिक सृष्टि में प्रदर्शित करते हैं, और जो उनके पार्षद हैं उनके धाम में वो भी यहाँ आते हैं। तो रुक्मिणी द्वारकाधीश हमेशा एक साथ में है, जैसे सीता देवी और श्री रामचंद्र हमेशा एक साथ रहते हैं, जैसे राधा रानी और श्री कृष्ण हमेशा साथ में रहते हैं, लक्ष्मी देवी और नारायण हमेशा एक साथ रहते हैं, परंतु भौतिक सृष्टि में जब प्रकट होते हैं तो लीला करते हैं। इसलिए ऐसे प्रतीत होता है कि लक्ष्मी देवी कोल्हापुर में तपस्या कर रही हैं और भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में वहां तिरुपति में तपस्या कर रहे हैं, दोनों अलग हो गए हैं, ऐसे लगता है, लीला है ये। इसलिए ऐसे लगता है कि जब सीता देवी श्री रामचंद्र के साथ में प्रकट होती हैं तो उनका अपहरण हो जाता है, श्री रामचंद्र से अलग हो जाती हैं, या पहले 15 या 16 साल में श्री रामचंद्र ने सीता देवी को देखा नहीं था, विश्वामित्र मुनि निमित्त बने, उनको ले गए और फिर जनक महाराज के दरबार में बहुत बड़ा स्वयंवर हुआ जिसमें श्री रामचंद्र ने सीता देवी से विवाह कर लिया। तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है कि ये मिले हैं अभी अभी, परंतु उनके धाम में तो वो हमेशा साथ में रहते हैं, केवल ये भौतिक सृष्टि की लीला है। ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण, इनका जन्म तथा कथित जन्म भी अलग अलग होता है। श्रीमती राधा रानी का जन्म रावल में और श्री कृष्ण का गोकुल में। और पहले जब श्रीमती राधा रानी का जन्म हुआ तो उन्होंने आंखें भी खोली नहीं। जब श्री कृष्ण को ले आए नंद बाबा वृषभानु महाराज के घर में, और जब श्री कृष्ण सामने आए तब पहली बार श्रीमती राधा रानी ने आंखें खोली। तो ऐसे लगता है कि दोनों का जन्म अलग अलग हुआ, दोनों कभी एक बार पहले मिले, ये भी एक लीला है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी वो भी हमेशा एक साथ में रहते हैं, शक्तिमान और शक्ति सदैव साथ में रहते हैं, युगल जोड़ी है इनकी द्वारका में भगवान के धाम में। और लेकिन जब वो यहाँ पे भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं तो लीला होती है। तो ऐसे लगता है कि श्री कृष्ण उनका जन्म कहीं और हुआ और रुक्मिणी देवी का जन्म कहीं और हुआ, फिर उनका विवाह हुआ। हालांकि रुक्मिणी देवी सदैव श्री कृष्ण की पत्नी है, उनकी रानी है। तो इस भौम लीला में रुक्मिणी देवी राजा भीष्मक की पुत्री बन के आई। राजा भीष्मक विदर्भ के राजा थे, वैसे वो जरासंध के अधीन थे। पहले वैदिक काल में ऐसे हुआ करता था कि एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे और उनके अधीन अनेक छोटे राजा हुआ करते थे, और अनेक बड़े राजाओं के ऊपर एक विश्व सम्राट हुआ करता था। तो खैर जरासंध एक बहुत बड़ा राजा था, जरासंध के नीचे ऐसे कई राजाएं थे जैसे शिशुपाल, कंस, राजा भीष्मक। भीष्मक अच्छे व्यक्ति थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे। उनका राज्य था कौंडिन्यपुर में, जो आजकल महाराष्ट्र में अमरावती के पास में है। और जैसे जैसे रुक्मिणी देवी बड़ी होती गईं तो श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुनती रहीं, क्योंकि राजा भीष्मक के दरबार में ऐसे अनेक साधु आया करते थे, कभी कभी नारद जी आया करते थे, कभी और साधु, या कभी इधर उधर से लोग आके श्री कृष्ण का गुणगान करते। तो श्री कृष्ण का वर्णन सुनती रहती रुक्मिणी देवी, यहां तक कि राजा भीष्मक भी सुनते रहते। राजा भीष्मक के मन में विचार हुआ कि काश मेरे पुत्री रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण से होता तो कितना अच्छा हो जाता। रुक्मिणी देवी भी यही चाहती थी, लेकिन भीष्मक के पुत्र थे जिनका नाम था रुक्मी। रुक्मी के विचार अलग थे। रुक्मी ने सोचा कि मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह मैं मेरे मित्र शिशुपाल से करना चाहता हूँ। शिशुपाल और हम दोनों ही जरासंध के अधीन हैं, जरासंध के मित्र हैं, तो जरासंध क्रोधित नहीं होगा। लेकिन यदि विवाह कृष्ण से कराएं और जरासंध और कृष्ण के बीच में बहुत पुराना वैर है, दुश्मनी है, तो फिर जरासंध हमारे ऊपर क्रोधित हो जाएंगे, ये ठीक नहीं रहेगा। और वैसे भी शिशुपाल हमारे अच्छे मित्र हैं, रुक्मी भी शिशुपाल के मित्र होने के कारण कृष्ण से बड़ा द्वेष करता था, बहुत ज्यादा, जैसे शिशुपाल करता था। शिशुपाल तो बचपन से ही श्री कृष्ण से द्वेष करता था। ऐसे बताया जाता है कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ तो गधे के आवाज करते करते उसका जन्म हुआ। जैसे गधा आवाज करता है ना, तो वैसे बच्चे के मुंह से आवाज निकली। और उसके तीन आंखें थी और चार हाथ थे, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। और चेदीराज शिशुपाल के पिता ने सोचा ये बड़ा अशुभ है, ये लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो बच्चे को हमें ज्यादा फेंक देना चाहिए। तो उस समय जिन ने आकर कहा कि नहीं, ऐसे नहीं करना आप, क्योंकि ये बच्चा आपका आगे चल के बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, एक बहुत शूरवीर योद्धा हो जाएगा, लेकिन इसकी मृत्यु होगी एक व्यक्ति के हाथों में। और ये कैसा पता चले कि ये व्यक्ति कौन है? जब कोई व्यक्ति आपके दरबार में आएगा और इस बच्चे को आप उसके गोदी में रखोगे तो उसके चार हाथों में से दो हाथ निकल जाएंगे, गिर पड़ेंगे, और उसका तीसरा आंख जो है वो भी गायब हो जाएगा। तो अनेक जो भी वहां उनके दरबार में आते, सबसे पहले चीज क्या करते, उनके पिता गोदी में बच्चे को रख देते। लेकिन जो चार हाथ थे वो चार के चार ही रह जाते, तीसरा आंख भी रह जाता। लेकिन जब श्री कृष्ण आए और शिशुपाल की मां ने बच्चे को कृष्ण के गोदी में रख दिया तो तुरंत वो दो हाथ जो है वो गिर पड़े, तीसरा आंख गायब हो गया। और तब सबको पता चला कि श्री कृष्ण के कर कमलों पर शिशुपाल की मृत्यु होने वाली है। तो शिशुपाल की मां ने कृष्ण से, वैसे संबंधित है, रिश्तेदार थे, तो शिशुपाल की मां ने कृष्ण से कहा कि ऐसी कृपा हम पे करना कि हमारे बच्चे को, हमारे पुत्र को मारना नहीं आगे कभी भी। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि यद्यपि वो इस योग्य है, फिर भी क्योंकि आपने कहा है तो मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा जब तक कि वो 100 बार मेरी निंदा नहीं करे। तो इतना कहकर फिर श्री कृष्ण वहां से चले गए। तो बचपन से ही शिशुपाल श्री कृष्ण से इतना द्वेष करता था कि जब छोटे दूसरे बच्चे और शब्द सीखते थे, बच्चे क्या कहते हैं, दूध कहता है, कोई माँ का नाम लेता है, कुछ कहता है, ये कृष्ण को गालियां देता रहता बच्चा। ये शिशुपाल जन्म से ऐसे करता। और रुक्मी तो शिशुपाल के घनिष्ठ मित्र थे, तो रुक्मी भी बहुत घृणा करते थे कृष्ण से। तो जब ये प्रस्ताव सामने आया कि रुक्मिणी देवी का विवाह श्री कृष्ण से होना है, तो रुक्मी को इतना क्रोध आया कि अपने पिता से कहा बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर राजा भीष्मक ने भी अपने पुत्र की बात मान ली, ठीक है, घर में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो जिस समय ये बातचीत हो रही थी पिता और पुत्र के बीच में, तो रुक्मिणी देवी ने पीछे से सुन लिया। रुक्मिणी देवी को बड़ी चिंता हो गई कि अब क्या होगा, मैं तो शिशुपाल से हरगिज विवाह नहीं करूंगी, मैं तो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हूँ। तो रुक्मिणी देवी ने सुनंद नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया, जिनमें कि वो बहुत विश्वास करती थी, और फिर उनसे कहा, मैं एक पत्र लिख रही हूँ, ये कृपया शीघ्र अति शीघ्र द्वारका जाके श्री कृष्ण के हाथों में दे देना, और किसी को बताना नहीं, बहुत गोपनीय बात है, ये पत्र गोपनीय है। फिर रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण से कहा, सुखदेव गोस्वामी पूरा चिट्ठी का वर्णन ही करते हैं कि मेरे पिता मेरा विवाह चेदीराज शिशुपाल से करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल ये विवाह नहीं करना चाहती, मैं केवल आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तो कृपया शीघ्र ही आकर मुझे यहाँ से आप उठा ले जाइए, लेकिन यदि आप मेरे महल में आएंगे, मेरे निवास स्थान में प्रासाद में आएंगे, तो ऐसे हो सकता है कि मुझे यहाँ से ले जाते जाते कहीं यहाँ जो और महिलाएं हैं या और कोई है उनकी हत्या ना हो जाए। तो हमारे यहाँ प्रथा है कि विवाह के पहले एक मेला होता है, और वहाँ पे दुर्गा देवी के मंदिर में सभी लोग जाते हैं, तो मैं भी जाऊंगी। तो जब मैं दुर्गा देवी के मंदिर से लौट के आती आ रही होती हूँ, उस समय मुझे आप उठा लेना। तो श्री कृष्ण को ये सही समय पे चिट्ठी मिल गई, और श्री कृष्ण तुरंत निकल पड़े वहां से, साथ साथ बलराम जी भी अपनी सेना को लेकर निकल पड़े। श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा कि चलो हम जाके मिलते हैं भीष्मक राजा से, लेकिन बाद में जब रुक्मिणी देवी को मैं उठा के ले जाऊंगा घोड़े पे रथ के ऊपर, तो आप यहाँ शहर के बाहर रहना अपनी सेना को लेकर, क्योंकि शिशुपाल जरासंध आदि उनकी सेनाओं को लेकर आक्रमण करेंगे अवश्य। तो बलराम जी बाहर खड़े रहे। जब रुक्मिणी देवी आई दुर्गा देवी के मंदिर में, इधर उधर देख रही थी कि कहीं श्री कृष्ण दिखाई पड़े, लेकिन श्री कृष्ण कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो बहुत निराश हो गई रुक्मिणी देवी कि शायद मेरी चिट्ठी समय पर पहुंची नहीं होगी, या पहुंच भी गई तो शायद श्री कृष्ण ने इनकार कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तो बहुत निराश हो गई। तो उस समय जैसे ही वो निराश हो गए, तो पीछे से अचानक किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया, और पीछे घूम के देखा तो कौन है, श्री कृष्ण। जल्दी से श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को उठा लिया, अपने घोड़े में अपने रथ में बिठा लिया, और वहां से चल पड़े। उस समय शिशुपाल ने देखा, वैसे जरासंध को संशय था कि ये श्री कृष्ण कुछ गड़बड़ अवश्य करेंगे, इसलिए बड़ी मात्रा में उन्होंने अपने सेना को वहां हाजिर करके करा दिया था। तो जगह जगह पे सैनिक खड़े हुए थे, और जैसे ही शिशुपाल ने देखा तो शोर मचाया, अरे देखो देखो श्री कृष्ण उठा के ले गए। तो सारे जितने भी योद्धा थे वहां पे सब ने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए और श्री कृष्ण का पीछा करना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को उठाकर तेजी से अपने रथ को भगा दिया, और पीछे पीछे रुक्मी के साथ शिशुपाल और आदि जितने भी बड़े बड़े राजा थे अपने सैनिकों को लेकर भाग रहे थे। बलराम जी की सेना ने अन्य राजाओं को और उनकी सेनाओं को रोक तो दिया, लेकिन रुक्मी बलराम जी की सेना को पार करके श्री कृष्ण के पीछा करते करते श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दूर से ही ललकार रहे थे श्री कृष्ण को, भाग क्यों जा रहे हो कायर की तरह, रुको और युद्ध करो, किस तरह के क्षत्रिय हो। तो श्री कृष्ण ने सोचा ठीक है, तो वो रुके, दोनों के बीच में धुआंधार युद्ध हुआ, और श्री कृष्ण को कौन पराजित कर सकता है। तो रुक्मी हार गए। जैसे ही वो कोई तीर छोड़ना चाहते थे तो श्री कृष्ण एक तीर छोड़ के उनके तीर को काट डालते, फिर उन्होंने रुक्मी के धनुष को ही काट डाला, फिर जो भी अस्त्र निकालते रुक्मी, श्री कृष्ण अपने तीर से उस अस्त्र को काट डालते, तोड़ डालते। जब तलवार उठाया तो तलवार को काट दिया और अंत में रुक्मिणी देवी को गिरफ्तार कर लिया, रुक्मी को गिरफ्तार कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। वो मारने वाले थे कि रुक्मिणी देवी ने निवेदन किया कृष्ण से कि मेरे भाई हैं, कृपया भाई की हत्या नहीं करना, इनको छोड़ देना। तो दंड तो देना था अवश्य। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ऐसे कैसे एक उचित या उपयुक्त दंड दिया जाए। तो उन्होंने रुक्मी के बाल को काट दिया आधा और आधे मूछ भी काट दी ताकि लोग जान लें कि ये हार चुके हैं और एक क्षत्रिय के लिए इस तरह का अपमान तो मृत्यु से भी अधिक कठिन होता है सहन करने के लिए, बिल्कुल असहनीय हो जाता है। तो रुक्मी देवी वापस चले गए और क्या करते, लेकिन वो घृणा हमेशा मन में रही, वो और भी प्रज्वलित अग्नि के समान हृदय में जलती रही। तो तेजी से श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को ले गए और जैसे ही वो एक स्थान में पहुंचे पास में, तुरंत विवाह कर ही लिया रुक्मिणी देवी से। और आज भी वो स्थान है जिसको माधवपुर कहते हैं और माधवपुर में हर साल एक बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें ये लीला भगवान की, जो उन्होंने अपहरण कर लिया रुक्मिणी देवी को, इस लीला के संदर्भ में बहुत बड़ी मेला होती है। वहाँ पे मंदिर भी है और फिर आगे विवाह करने के बाद आगे द्वारका में ले गए और द्वारका में फिर बहुत बड़े धूमधाम से विवाह मनाया गया दोबारा, जैसे यहाँ भी होता है ना शादी पे रिसेप्शन होता है शाम को, तो द्वारका में बहुत बड़े पैमाने पर मनाया विवाह। तो इस तरह से रुक्मिणी देवी श्री कृष्ण की पहली रानी हुई। श्री कृष्ण के 16,108 रानियां थीं और हर एक रानी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र हुए। तो कितने हुए पुत्र? 1,60,000 के करीब। और ये जो पुत्र थे, हर एक के आगे चल के 10 पुत्र हुए। तो ऐसे यदुवंश की संख्या बढ़ती गई। तो रुक्मिणी देवी के जो पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे, नाम क्या है? प्रद्युम्न। और अन्य भी थे। तो रुक्मिणी देवी के विवाह से हम अनेक चीजें सीख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि रुक्मिणी देवी ने जब अपने मन में निर्णय लिया था कि वो श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, तो उन्होंने श्री कृष्ण को देखा नहीं था, केवल श्री कृष्ण के बारे में सुना था। हाँ, ये तो एक लीला है भौतिक सृष्टि में, उनके धाम में तो सदैव हैं जैसे हम पहले कह चुके हैं, लेकिन केवल श्री कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से रुक्मिणी देवी के हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो गई। तो ये प्रमाण है, सबूत है कि केवल कृष्ण कथा और कृष्ण नाम श्रवण करने से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा। दूसरा प्रमाण है यज्ञ पत्नियों का, जो वृंदावन और मथुरा के बीच में रहा करती थी अपने पतियों के साथ में। जब श्री कृष्ण बलराम और अपने ग्वाल बाल सब गाय चराते चराते जा रहे थे, ग्वाल बालों को भूख लगी, ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें बहुत भूख लगी है, और कृष्ण ने कहा मुझे भी भूख लगी है, तो जाओ वहाँ याज्ञिक ब्राह्मण है, उनसे कुछ भिक्षा मांग लेना। याज्ञिक पत्नियों ब्राह्मणों ने परवाह नहीं की इनकी, इनकी ओर देखा भी नहीं, ना कहने की बात दूर है, इनकी ओर सर उठा के आँख उठा के देखा भी नहीं, निराश होकर कृष्ण के पास आए। कृष्ण ने कहा उनके पत्नियों के पास जाना और वहाँ जाके उनसे मांगना। तो जैसे ही ग्वाल बाल पहुंचे वहां, तो यज्ञ पत्नियों ने तुरंत जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण को चाहते हैं भोजन, जितना भी उनके पास था वो भर भर के उनको दे दिया, क्योंकि वो श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त थी। उन्होंने भी श्री कृष्ण को पहले देखा नहीं था, केवल श्री कृष्ण के बारे में श्रवण किया था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे हम ये जान सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को जान सकते हैं, कि केवल कृष्ण कथा का श्रवण करना ही हमारे लिए उचित है। समय से पहले यदि हम श्री कृष्ण को देखना चाहें, उनका दर्शन करना चाहें, तो वो संभव नहीं है। और यदि दर्शन कर भी लेते तो हमारे अंदर यदि कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो ऐसे दर्शन का क्या लाभ। आखिर दुर्योधन ने, शिशुपाल ने, रुक्मी ने और ऐसे अनेक असुरों ने कृष्ण का दर्शन किया ना, लेकिन क्या लाभ हुआ उनको, बल्कि उनके हृदय में केवल घृणा, ईर्ष्या ये बढ़ती गई, कम नहीं हुई। तो केवल भगवान का दर्शन करना ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनकी कथाओं का श्रवण करने से हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत करना। फिर प्रेम के आंखों से जब हम भगवान कृष्ण को देखेंगे तब हमारी दृष्टि या हमारा दर्शन परिपूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे भगवान की कथाओं का श्रवण करते करते हम इस योग्य हो जाएंगे कि भगवान स्वयं अपने आप को हमारे सामने प्रकट कराएंगे। भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ भगवान को जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं केवल भक्ति से ही जान पाओगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और मेरी सेवा करके, मेरी भक्ति करके, मेरे पवित्र नामों का, कथाओं का श्रवण, कीर्तन आदि करके जब तुम्हारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी मेरे प्रति, तो उस भक्ति के कारण तुम मुझे देखने के लिए योग्य हो जाओगे। तो भक्ति करने से तुम मुझे जानोगे, जानकर तुम मेरा दर्शन करने के लिए योग्य हो जाओगे, और फिर दर्शन करने के बाद तुम मेरे धाम में मुझे तुम प्रविष्ट होने के लिए काबिल हो जाओगे। ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च। तो ज्ञातुं, द्रष्टुं और प्रवेष्टुं। ज्ञातुं मतलब तुम जान जाओगे, कैसे जानोगे, भक्ति करके। भक्ति करना मतलब क्या है, श्रवण कीर्तन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना इत्यादि। और फिर ऐसे जानने के कारण द्रष्टुं, तुम मुझे देख पाओगे। तो ऐसा दर्शन जो है ये मूल्यवान दर्शन है, ये परिपूर्ण दर्शन है, अर्थदम है। अर्थदम अर्थात ये वास्तव में लाभदायक है। तो ऐसे कई बाहर के जगत में जो भक्त नहीं है, केवल कोई धन कमाने के लिए वो भजन गाते हैं, उनके कैसेट आदि बहुत निकलते हैं, वह स्वयं भी इन भजनों की रचना करते हैं और इन भजनों में ऐसे अक्सर गाते हैं प्रभु मुझे दर्शन देना, ऐसे कुछ न कुछ कहते रहते हैं, मतलब ये होता है उनका। लेकिन ऐसे सस्ते दर्शन से क्या लाभ, हमें ऐसा सस्ता दर्शन नहीं चाहिए। हम तभी भगवान को देखना चाहते हैं जब हम योग्य होंगे, समय से पहले नहीं। तो तैयारी हमें करनी है भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करके, जैसे रुक्मिणी देवी ने की, जैसे यज्ञ पत्नियों ने की। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रवण कीर्तन का पथ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए भक्ति का सार है। तो खैर, रुक्मिणी देवी का विवाह ऐसे हो गया और रुक्मिणी देवी के बाद जाम्बवती देवी, सत्यभामा देवी और अनेक रानियां आईं। 8 प्रमुख रानियां हैं और फिर 16,100 रानियां और थीं श्री कृष्ण की। एक बार ऐसे हुआ कि नारद जी द्वारका में आए सत्यभामा देवी से मिलने के लिए। आप तो जानते हैं कि रुक्मिणी देवी और सत्यभामा देवी का स्वभाव बिल्कुल अलग अलग था। रुक्मिणी देवी का स्वभाव बड़ा सौम्य था, कभी भी क्रोधित नहीं होती थी, अपने हृदय में कृष्ण प्रेम का धन जोड़ के रखती थी। सत्यभामा देवी, उनका स्वभाव थोड़ा तेज था, गुस्सा जल्दी हो जाती थी, श्री कृष्ण भी डर जाते थे सत्यभामा के सामने। तो एक दिन ऐसे हुआ कि नारद जी आए। नारद जी ने सत्यभामा देवी से कहा कि वैसे आप सोचती हो, आप सोच रही हैं कि श्री कृष्ण के हृदय में आपके प्रति बहुत प्रेम है, परंतु नहीं, जो रुक्मिणी देवी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति है वो इतना ज्यादा है कि रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण को वश में कर लिया है, लेकिन आप श्री कृष्ण को ऐसे वश में नहीं कर पा रहे हो। तो सत्यभामा देवी को गुस्सा आया, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो, ये तो हो ही नहीं सकता, साबित करो ये बात मुझे। तो फिर नारद जी तो बड़े चतुर हैं, वो जब बात करते हैं तो सामने वाले को मना ही लेते हैं। तो उन्होंने कहा, देखो कोई बात नहीं, ऐसे करना, एक व्रत का पालन आप करना, तुलभार कहते हैं इसको, आपने सुना, यहाँ भी कर्नाटक में होता है, किसी एक क्या कहते हैं स्केल को, तिजोरी, तराजू में आपके वजन डालते हैं, आप खुद बैठ जाते हो और फिर वहाँ धन सोना चांदी आदि अपना वजन जितना होता है उतना फिर आप दान देते हो। ऐसे यहाँ दक्षिण भारत में या भारत में भी होता है। तो नारद जी ने कहा कि हाँ ऐसे आप करना सत्यभामा देवी, सबसे पहले आप मुझे दान दीजिए। क्या दान चाहिए मुझे? श्री कृष्ण को दान दे दीजिए, फिर मैं श्री कृष्ण को स्वीकार करूंगा और फिर मुझसे श्री कृष्ण आप खरीद लीजिए, हम तुला भार करेंगे, तराजू में हम श्री कृष्ण को बिठाएंगे और आप धन ले आइए, फिर जितना भी श्री कृष्ण का वजन होगा उतना धन मैं ले लूंगा और कृष्ण को लौटा दूंगा। तो सत्यभामा देवी ने सोचा कि ये तो बहुत सरल बात है, तो इतना धन क्या मेरे पास नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर नारद जी की बात मान ली, तो पहले तो श्री कृष्ण को बेचने की बात, दान देने की बात आई, तो दूसरे जो रानियां थी वो कहने लगी, ऐसे कैसे दान दे सकते हो हमारे पति को? तो सत्यभामा देवी ने किसी तरह से सबको मना दिया, नहीं ठीक है नारद जी को ही तो दे रहे हैं ना। तो बड़े दुखी हो गई सारी रानियां कि श्री कृष्ण को दान दे दिया नारद जी के पास। और अब जब नारद जी को दान मिल गया तो कहा कि अब खरीद लो इनको वापस। तो खरीदने की बात आई तो सत्यभामा देवी ने सोचा ये तो बहुत आसान बात है, तो उनकी तिजोरी में जो भी कुछ था थोड़ा कुछ लेकर आई, लेकिन तराजू बिल्कुल हिला ही नहीं, तो और धन लाई अपने सारे तिजोरी को खाली कर दी, लेकिन तराजू हिले नहीं। तब सत्यभामा देवी ने सोच लगी अब क्या होगा, तो अपने अभिमान को निगल लिया, क्योंकि सत्यभामा देवी का अभिमान काफी हुआ करता था। तो उन्होंने सोचा अब मुझे दूसरे रानियों से पूछना होगा कि आपकी गहने भी दे दो, क्या करें, अब पूछना होगा, अब कोई उपाय नहीं रहा। तो अन्य रानियों से पूछा, तो अन्य रानियों ने भी क्या किया, मजबूर होकर देना पड़ा, क्योंकि कृष्ण चाहिए ना वापस। तो अपने पास जितना भी सोना था, कुछ गहने थे, सब कुछ दे दिए, और वो सब कुछ तराजू में रखने के बाद भी तराजू हिला ही नहीं। अब सारे रानियां, सत्यभामा देवी तो उनकी दशा तो खराब हो गई, क्या किया जाए अब। तब नारद जी ने कहा कि देखिए आप बिल्कुल असमर्थ हैं, नहीं कर पाएंगे, हमने कहा था कि आप ये करोगे तो आपके प्रति जो श्री कृष्ण की भावना है वो बढ़ेगी, लेकिन धन कम पड़ रहा है आपका, क्या करें, एक ही उपाय है इसके लिए। सत्यभामा देवी कह रहे बताइए क्या उपाय है। उपाय ये है कि आप रुक्मिणी देवी को यहाँ बुलाइए। तो सत्यभामा देवी को दोबारा अपना अभिमान निकलना पड़ा, अब क्या किया जाए, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं था। तो रुक्मिणी देवी को बुलाया, कुछ कहो, कुछ करो अभी। तो रुक्मिणी देवी ने एक तुलसी दल लिया और वो सोने चांदी आदि जितने भी गहने आदि थे वहां पे रख दिए, और फिर तराजू बिल्कुल ठीक हो गया और श्री कृष्ण को वापस मिल गए। तो फिर नारद जी इसके द्वारा साबित करना चाहते थे कि रुक्मिणी देवी की भक्ति कितनी है। वैसे सत्यभामा भी तो भगवान की रानी ही है, श्रीमती राधा रानी की विस्तार मानी जाती है। सत्यभामा देवी के लिए श्री कृष्ण पारिजात वृक्ष लेकर आए स्वर्गलोक से, तो सत्यभामा देवी भी कोई कम नहीं है, लेकिन उनका भाव अलग है बस। तो तुलसी दल का महात्म्य क्या है, इसको साबित करने के लिए भी ये लीला कभी कभी बताई जाती है। तो खैर, इस तरह से रुक्मिणी देवी का कृष्ण प्रेम कितना शुद्ध है ये हम जान सकते हैं। रुक्मिणी देवी का स्वभाव ऐसे था कि एक बार श्री कृष्ण मजाक कर रहे थे रुक्मिणी देवी से कि आप इतने अच्छे घर की राजकुमारी हो, राजा भीष्मक आपके पिता हैं और मेरी कोई योग्यता नहीं है, मुझसे शादी करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर ली, लेकिन और कितने सारे बड़े बड़े योग्य राजकुमार और राजाएं हैं, उनको चुन लो, किसी से भी विवाह कर लो। तो रुक्मिणी देवी चामर से सेवा कर रही थी श्री कृष्ण की, जैसे ये बात सुने वो समझ नहीं पाए कि श्री कृष्ण मजाक कर रहे हैं, वो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर श्री कृष्ण को बहुत कुछ समझाना पड़ा, फिर ठीक ठाक हो गए। तो रुक्मिणी देवी और सत्यभामा देवी का भाव ऐसे अलग अलग था। तो ये दो प्रमुख रानियां हैं वैसे द्वारका में श्री कृष्ण की, रुक्मिणी देवी और सत्यभामा देवी। तो कल रुक्मिणी देवी का आविर्भाव दिवस था, तो आविर्भाव दिवस में खास करके हमें उनके चरण कमलों में प्रार्थना करना चाहिए, उनकी कृपा याचना करनी चाहिए कि श्री कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में भी शुद्ध प्रेम जागृत हो जाए। श्री रुक्मिणी देवी की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरे कृष्णा।